मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 15 सितंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, एकेडमी की जो अगले साल फरवरी में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं, उसके लिए चार नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार नौजवान साथियों के नाम हैं मुकेश कुमार दिल्ली से, सचिन मिश्रा सीतापुर उत्तर प्रदेश से, विक्रम सिंह मकराना राजस्थान से और सत्येंद्र कुमार सिंह छपरा बिहार से। तो मुकेश, सचिन, विक्रम और सत्येंद्र, मैं आप सभी साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मित्रों ये इंस्ट्रक्शन भी देता हूं, या आप कह लीजिए कि राय देता हूं, सलाह देता हूं कि प्लीज़, चूंकि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इसका मतलब है कि आपका एकेडमी पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विश्वास है और आप एकेडमी से कुछ पाना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी होगा मित्रों कि आप भी अपने लेवल पर अपनी तैयारी करें। हम लोग तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं और उस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि प्लीज़ आप सब किसी भी स्थिति में ऑडियो गाइडेंस को मिस न करें। यदि किसी वजह से एक आध दिन मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये तो ऑडियो गाइडेंस ऐसा है जो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, उसे आप दूसरे दिन सुन सकते हैं, तीसरे दिन सुन सकते हैं। उसका कारण यह है कि चूंकि ये ऑडियो गाइडेंस मूलतः आपने देखा है कि न्यूज़पेपर्स और रेडियो न्यूज़ को लेकर के चलता है और कोई भी जो न्यूज़ है वो अपने आप में एक दिन कंप्लीट नहीं होती, वो पीछे से चली आती है और आगे पता नहीं किन कितने दिनों तक चलते हुए अंत में समाप्त होती है। तो यदि उस बीच की एक कड़ी भी आपकी कमजोर हो जाती है तो डेफिनेटली न्यूज़ पर आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है। और सच पूछे तो हमारी यही कमजोरी आगे चल करके सिविल सर्विस की लिस्ट से कहीं ना कहीं बाहर हो जाने का हमारा एक कारण बन जाती है। मित्रों, इसीलिए आपको सतर्कता बरतनी होगी, इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होगा और आप ये भी महसूस कर चुके होंगे कि जो लाइफ मैनेजमेंट का भी जो पार्ट होता है वो भी एक कंटिन्यूटी में चलता है। जैसे कि मैंने कल इस बात की शुरुआत की थी कि हमारा मन किसी से ऊबता कैसे है, तो अभी हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, असल में क्या है कि मेरी जो अपनी स्टाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में कि मन ऊबता क्यों है, अगर आप कहें तो मैं इस टॉपिक को दो मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, है ना। आपको कुछ टिप्स बता दूंगा और बात खत्म हो जाएगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा और शायद आपको भी लगे कि पूरी बात बताई जा चुकी है, अब तो जानने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि बात पूरी तरह से बताई नहीं गई है, आपकी समझ में भी नहीं आई है, आपके अंदर वो बात उतरी नहीं है। क्योंकि आप उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए आप तो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बात अधूरी ही रह गई है या कहीं कुछ मिसिंग है, या और यदि अधिक तरीके से अच्छे तरीके से बताई जाती तो शायद और अधिक बेहतर होता। लेकिन मैं जानता हूं, इसीलिए मैं डिटेल्स में बताने के कारण वो उसे दो तीन चार पता नहीं आगे कितने एपिसोड तक ले जाने के लिए मजबूर हो जाता हूं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए जरूरी होगा कि आप उस ऑडियो गाइडेंस की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलें, ताकि उस किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को आप अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से समझ सकें। और सच पूछे तो सिविल सर्विस में सफलता का जो सबसे बड़ा जो राज है, जो रहस्य है, यदि कुछ है तो मैं समझता हूं कि शायद यही है। मित्रों, अब मैं इस स्वागत के बाद अब आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल किया था। पहला सवाल तो मैंने यही किया था कि आपको सोचना यह होगा कि ऊब कौन रहा है, आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर कौन ऊब रहा है। उसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि आप लोगों ने भी शायद यदि यह प्रश्न किया हो अपने आप से तो यही निष्कर्ष हासिल हाथ आया हो कि शायद हमारा मन ऊबता है। हम बोलचाल की भाषा में भी मन का बहुत इस्तेमाल करते हैं और यदि यही कंक्लूजन आपको मिला हो तो आपको गलत कुछ कंक्लूजन नहीं मिला है। सच यही है कि जो हमारा मन है वह ऊबता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा मन ऊबता है, अब सवाल फिर यहां एक ये पैदा होता है कि ये जो हमारा मन ऊब रहा है ये किसका है, आपका है मैं थोड़ा सा एक लॉजिकल बात आपसे शेयर कर रहा हूं और थोड़ा सा शायद रूड भी लगे, कठिन भी लगे और हो सकता है कि आपको अविश्वसनीय भी लगे। एक सवाल मैंने आपसे कल भी गाड़ी के संदर्भ में कहा था, कार के संदर्भ में, आपको याद होगा कि कोई चीज आपकी कब होती है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपकी कोई भी चीज तभी होगी जब आपका उसके ऊपर अधिकार होगा। यदि उस पर आपका अधिकार नहीं है तो वो फिर आपका नहीं है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एक और उदाहरण से ये बात कहूं कि मान लीजिए कि आपका 1,00,000 रुपए बैंक में जमा है, राइट, वो अभी तक आपका है, लेकिन किसी वजह से सरकार ने आपके उस खाते को फ्रीज कर दिया है, मतलब रोक लगा दी है कानूनन कि आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। अब वो पैसा आपका नहीं है क्योंकि अब आपका उस पर से अधिकार खत्म हो गया है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये चीज मेरी है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर आपका अधिकार है या नहीं है। याद रखिए, इसीलिए जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं, वैसे तो विमेन एम्पावरमेंट सीधी सी बात है कि अगर वो पत्नी है तो उस घर की मालकिन है, लेकिन जो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वो ये है कि निर्णय वो ले पाती है कि नहीं ले पाती है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के दूसरी चीजों के बारे में निर्णय लेने का उसको अधिकार है या नहीं है। ये रियल में एम्पावरिंग द विमेन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि यदि मन आपका है तो उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। और मन पर आपका अधिकार कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपका आपके यहां यदि एक नौकर है और उस नौकर पर आपका अधिकार है या नहीं है, इसका पैमाना क्या होगा? सिंपल सी एक ही बात आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि नौकर आपकी बात मान रहा है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा वो कर रहा है। यदि वो वैसा कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका उस पर अधिकार है, और यदि वो वैसा नहीं कर रहा है और पता लगा कि आपको ही उसकी बात माननी पड़ रही है तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि वो प्रोटोकॉल में या पद के लिहाज से, सैलरी के लिहाज से तो आपका नौकर हो, लेकिन इनफैक्ट वो आपका नौकर नहीं है। तो मित्रों याद रखिए, जो अधिकार का जो पैमाना होता है वो होता है नियंत्रण पर, कि आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं या आप उसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। यदि आप नियंत्रित कर रहे हैं तो आप मालिक हैं, यदि आप नियंत्रित हो रहे हैं तो मालिक होकर भी आप मालिक नहीं हैं। दुनिया को दिखाने के लिए भले ही आप कहते रहिए कि मैं मालिक हूं और दुनिया मान भी लेगी, लेकिन उससे जो एक प्लेजर डराइव होता है, उससे जो एक सुख मिलता है, उससे जो काम बनते हैं वो नहीं होंगे। दोस्तों मैं जानता हूं कि हम सब यही कहते हैं कि मन हमारा है, हमारा है ही, अब हमें देखना यह होगा कि वो सच में हमारा है या नहीं है। तो जब मान लीजिए कि आप ऊब रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले ऊब रहे हैं, देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो मुझे ये काम दिया गया है, सच बात यह है कि यह मेरी पसंद का काम नहीं था, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है इसलिए मैं ऊब रहा हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी तरफ से किसी काम को चुना, इसके बाद भी वो ऊब रहे हैं। इसलिए ये तर्क ज्यादा समय तक काम करता नहीं है कि मुझे अपनी पसंद का काम दे दो तो मैं उसे करता रहूंगा। इसलिए मित्रों मैं अक्सर नौजवान दोस्तों को द थ्री इडियट्स फिल्म की याद दिलाता हूं। थ्री इडियट्स फिल्म का केवल यही संदेश नहीं है कि अपनी पसंद का काम कीजिए, अपने मन का काम कीजिए, चाहे फोटोग्राफी में ही आपका मन क्यों न लग रहा हो। मित्रों उसमें एक ये भी बात कही गई है, ये भी संदेश है कि यदि आपको अपने मन का काम नहीं मिला है तो दूसरे के मन का जो काम है आप उसे अपने मन का काम बना लीजिए। जो आपको मिल गया है आप उसे ही अपने मन का काम बना लीजिए ना, जैसे कि उसका हीरो आमिर खान करता भी है, रेंचो नाम है उसका, आपने देखा है कि वो तो जो डिग्री ले रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री, वो भी वो अपने लिए नहीं ले रहा है, वो डिग्री वो दूसरे के लिए ले रहा है, इसके बावजूद उसको पूरे मन से लगा करके उस काम को करता है और अपने कॉलेज में टॉप भी करता है, उसमें मन लगाता है, भले ही वो दूसरे के लिए हो तो क्या क्या बात है। तो मित्रों सवाल इस बात का नहीं है कि हम अपने पसंद का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि हम में इतनी ताकत है कि नहीं है कि हम किसी भी चीज को अपनी पसंद का बना सकते हैं। देखिए दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अपने पसंद का काम मिलता है, बहुत कम लोग। और जिनको आपको लगता भी है ना, जिनके बारे में कि यार ये तो अपने पसंद का काम कर रहा है, शुरुआत में आप नहीं जानते कि वो सच में उसके अपने पसंद का ही था या नहीं था, या बाद में उसने अपने पसंद का बना लिया, या परिस्थितियों ने उसे ऐसे संयोग में डाल दिया कि वो काम हाथ में आ गया और वह उसी काम को आज कर रहा है। इस कहानी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो उनकी सफलता है उसमें एक बात तो निश्चित है कि उन्होंने उस काम को अपने मन का बना लिया है। तो अब ये जो बना लिया है ये कैसे संभव हुआ? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि जो उबने वाला जो तत्व था, जो उबने वाला मन जो है, जिसे हम मन कह रहे हैं, उस पर उनका नियंत्रण है। मन की वहां नहीं चल रही कि भैया तुम जब चाहो तब उब जाओ और जब चाहो तब तुम उसमें डूब जाओ, वहां नहीं चलने वाला। वो तो यह है कि तुमको इस काम में डूबना ही पड़ेगा, तुमको इस बात की इजाजत ही नहीं है कि तुम इससे उबो। हां कभी कुछ थक जाओगे, कभी थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी, कभी लगेगा कि ताजगी के लिए कुछ और जरूरत है किसी चीज की, तो कोई बात नहीं उसका मैं उपाय करूंगा। क्योंकि देखिए ताजगी की तो जरूरत होती है, हम सब आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हैं, हम मशीन तो हैं नहीं, और अगर मशीन भी हो तो मशीन को भी जरूरत होती है ताजगी की। आपको मालूम है कि उसमें साहब मोबाइल डाला जाए, ग्लिसरीन डाला जाए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाए, ये तो उसमें भी करना पड़ता है। तो मन के साथ तो हम वैसा व्यवहार करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मन एक जैविक इकाई है, एक बायोलॉजिकल यूनिट है, है ना? उसके लिए अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके फंक्शंस के भी अपने कुछ स्टाइल्स होती हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना चाहिए और हम सब जानते ही हैं। तो अपने मन को वहां तक तो हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मन के हिसाब से ही हम सारा कुछ एडजस्ट करने लगे। और यही ज्यादातर होता है कि मन जैसा कर रहा है हम वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हम मन से करा रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहली बात तो यही है कि यदि आप अपने मन से अपने हिसाब से काम नहीं करा सकते तो फिर वह आपका मन नहीं है, वह किसी दूसरे का मन है। और जब तक आप किसी दूसरे के मन को अपना मन मानने की भूल करते रहेंगे, दूसरे के मन के हिसाब से चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो निश्चित जानिए कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न मिल जाए, आप देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी चीज को पाने के बाद भी कुछ समय के बाद ऊब जाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि आपके पास अपना मन है तो जो कुछ भी मिल जाएगा आप उसी को एंजॉय करेंगे और उसी को बड़ी उपलब्धि में तब्दील कर देंगे। आप अपने मन को, अपनी उपलब्धियों को किसी दूसरे से कंपेयर ही नहीं करेंगे। आप अपने में मगन हैं, अपने में एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं। तो मित्रों ये मैंने मन के बारे में छोटी सी आपको एक तकनीक बताई है कि अपने मन को अपना बनाइए। और इसके बारे में और जो एक दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। तो दोस्तों लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में बस आज इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों जहां तक कल की AIR न्यूज और न्यूज पेपर का सवाल है तो AIR न्यूज में तो काफी कम चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो न्यूज पेपर है उसमें काफी कुछ चर्चा करने की बातें हैं। इसलिए मैं यहां एक बात इसी के माध्यम से अपने सभी प्रिय श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत से मेल आते हैं कि सर जो आप ही न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स देते हैं क्या उतना ही सफिशियंट है, हम और कुछ न पढ़ें, या यदि हम न्यूज सुन लें तो न्यूज पेपर न पढ़ें, या न्यूज पेपर पढ़ लें तो न्यूज न सुने, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को शक्ति देते हैं, एक दूसरे को स्थगित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरे का काम चल जाएगा, दूसरे के बिना पहले का काम चल जाएगा। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आज के ही न्यूज और न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे कि कुछ बातें हैं जो न्यूज में हैं वो न्यूज़पेपर्स में नहीं है। जनरली न्यूज की बातें न्यूज़पेपर्स में कभी कभी कुछ आ भी जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में होती हैं लेकिन न्यूज में नहीं होती, है ना? तो दोनों में किसको चुने ये प्रश्न तो दिमाग में आने ही मत दीजिए। तो दोस्तों कल के रेडियो न्यूज में दो केवल इंपॉर्टेंट न्यूज थी। पहला तो था खासकर मुद्रा स्फीति को लेकर के, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। मुद्रा स्फीति का साफ मतलब है, मुद्रा का मतलब है मनी, जिसको हम रुपया कह लीजिए आज भारत के संदर्भ में। स्फीति का मतलब है बहुत ज्यादा फैल जाना, विस्तार हो जाना। मुद्रा स्फीति का सामान्य सा उसका मतलब होता है कि मुद्रा की कीमत घट जाना। देखिए इसमें सीधे सीधे सप्लाई से मतलब है। मुद्रा स्फीति का मतलब है मुद्रा में विस्तार हो जाना। मुद्रा में विस्तार हो जाने का मतलब है कि मुद्रा की सप्लाई ज्यादा हो जाना, और यदि किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसकी कीमत घट जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि सब्जियां कितनी महंगी हैं, क्यों? क्योंकि अभी सब्जियों की सप्लाई कम है, है ना। बरसात खत्म हो रही है, नया सीजन आ रहा है, तो जब तक नई सब्जी नहीं आ जाएगी तब तक उसकी कीमत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि प्याज के लिए और अरहर के लिए, यह न्यूज में भी था, अरहर की दाल के लिए जो कि बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, अब इनके रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाहर से मंगा रही है, मतलब उसकी सप्लाई को बढ़ा रही है। तो जब दाल और प्याज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो इन दोनों चीजों की कीमत कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक इसी तरह से मुद्रा स्फीति है कि जब मुद्रा स्फीति, मुद्रा की सप्लाई किसी भी वजह से अधिक हो जाएगी बाजार में, तब उसकी कीमत गिर जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। ये मतलब सीधी सी बात है, मुद्रा की कीमत गिर रही है इसका मतलब चीजें महंगी हो रही हैं, और मुद्रा की इस कीमत घट रही है इसका मतलब है कि मुद्रा की आपूर्ति कम हो रही है, वस्तुओं के मूल्य कंट्रोल में आ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए कि भारत में जो अभी की स्थिति है, जो न्यूज में था वो ये है कि मुद्रा स्फीति कंट्रोल हुई है, इसका मतलब है कि महंगाई घटी है, यानी कि जो मुद्रा की सप्लाई है वो कम हुई है, इसका यह मतलब हुआ न्यूज के हिसाब से, है ना। अभी तो मैं आपको मुद्रा स्फीति का मतलब बता रहा था, शब्द का मतलब, सिचुएशन क्या है। न्यूज में यह थी कि एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले 10 महीनों से लगभग जो होलसेल इंडेक्स है, है ना, जो वो काफी कुछ नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, और स्वाभाविक है कि जब होलसेल कंट्रोल में होता है तो रिटेल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जरूर है कि अगर होलसेल में थोड़ी कमी होगी तो फिर रिटेल में थोड़ी कमी नहीं होती है। हाँ, होलसेल में जब ज्यादा कमी हो जाती है तब रिटेल में फिर थोड़ी सी कमी होने लगती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों की जो मुद्रा स्फीति नियंत्रण में है, और इसके बाद न्यूज में दिया है कि अब लोग मांग कर रहे हैं कि ब्याज की दर कम होनी चाहिए। आपको मालूम है कि अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की बैठक हुई थी तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें मांगी थी, तीन सच पूछे तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मांगे थी। पहला तो यह कि जीएसटी को लागू किया जाए, दूसरा था लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ उपाय किए जाएं, और तीसरा यह था कि ब्याज दर कम की जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बैंक से लोन लेता है और फिर अपनी इंडस्ट्री लगाता है। तो ब्याज दर के लिए जो अभी तक जो रिजर्व बैंक कहता रहा है, आप देख रहे हैं कि लंबे समय से रिजर्व बैंक ब्याज की दरें नहीं घटा रहा है, उसका जो एसएलआर वगैरह होता है वो ब्याज दर से सीधे संबंधित हैं, और इसके प्री पर कई क्वेश्चन भी पूछे गए थे, प्री में इस बार आए थे, और इसके बारे में चूंकि मैं पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं, एसएलआर वगैरह सब क्या है, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर क्या है, इसके बारे इसलिए मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां आपको एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स के तौर पर, एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र के तौर पर यह सोचना है कि भाई मुद्रा स्फीति का संबंध ब्याज दर से कैसे है, ये आप सोचिए और बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि ब्याज दर घटने का क्या मतलब हुआ, देखिए ब्याज दर अगर आप घटा देंगे तो लोग बैंक से ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई है, है ना। तब आप भी सोचेंगे कि यार ब्याज की दर कम है तो चलो ले लो बैंक से कर्जा, ले लो मकान बना लो, 5000 रुपए में मकान का किराया देता हूं, बैंक से मैं 5 लाख का लोन ले लेता हूं, मेरा एक फ्लैट बन जाएगा, 5000 रुपए में उसके वो ईएमआई चुकाता रहूंगा, ब्याज चुकाता रहूंगा, तो कुछ साल में मकान मेरा हो जाएगा। तो जब ब्याज दर कम होती है तो आप बैंक से ज्यादा ऋण लेने लगते हैं, और जब आप बैंक से ऋण ले रहे हैं तो वो पैसा जो बैंक के खजाने में था वो मार्केट में आ गया, और मार्केट में आते ही मुद्रा की सप्लाई बढ़ गई, तो मुद्रा की सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन चूंकि अभी हमारी महंगाई नियंत्रण में है तो उतने महंगाई के बढ़ने को हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही महंगाई हो और फिर और महंगाई बढ़ जाए तब मुसीबत हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा कि कहा गया कि ब्याज दर अब कम होनी चाहिए क्योंकि मुद्रा स्फीति नियंत्रण में है। दोस्तों बस केवल सिविल सर्विस का मेन एग्जाम यही है, और यहां तक कि प्री के भी क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। आप आज प्री का पेपर उठा करके देखेगा तो पता लगेगा कि जो मैंने ये मुद्रा स्फीति को लेकर के आपसे जो चर्चा की है एक तो बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, जो एसएलआर और रेपो दर, रिवर्स रेपो दर की मैं जो बात कर रहा हूं, और दूसरा ये महंगाई को लेकर के और ब्याज की दर को लेकर के। आप देखेंगे कि दो क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड आए हुए हैं उसमें, और इसको समझने के बाद हो सकता है कि इससे पहले आपको वो प्रश्न बड़े कठिन मालूम पड़ते हो, आप देखेंगे कि वो प्रश्न बिल्कुल सरल है, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न थे। बस तो इसी को मैं बेसिक्स कहता हूं दोस्तों, कि जब ये आपकी पकड़ में आ जाता है, ये आपकी समझ में आ जाती है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये हमारी जो 15 दिन की क्लासेज होती हैं केवल इसी बेसिक्स पर आपकी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। दोस्तों जो दूसरी खबर थी वो नेपाल को लेकर के थी, कि नेपाल में आपको मालूम है कि पहले राजा का शासन था, 2006 में वहां जब वो आंदोलन हुआ तो राजा का शासन खत्म हो गया। इसके बाद फिर वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद फिर संविधान सभा तैयार हुआ, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने को सेक्युलर स्टेट घोषित किया, अदरवाइज नेपाल अभी तक अपने को हिंदू राष्ट्र कहता था। अब जब फिर उस पर बातचीत होने लगी तो उन्होंने अपने को सेक्युलर कहा है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हालांकि ऐसे चाहने वालों की संख्या कम थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी थोड़े से लोगों ने इसके पक्ष में मतदान दिया। तो जो वर्ग चाह रहा है कि नहीं देश को, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो उन्होंने फिर अपने आंदोलन उसकी शुरुआत की है, आंदोलन वगैरह किया है। उसको लेकर के एक छोटी सी न्यूज थी, चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, नेपाल की घटनाओं का भारत पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसे न्यूज में शामिल किया गया है। और आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल अफेयर का हिस्सा होता है उसमें चूंकि पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए नेपाल के घटनाक्रम पर आपकी निगाह होनी चाहिए और नेपाल के बारे में आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों इसी के साथ ही आपने न्यूज में यह भी सुना है कि जो लंका के प्राइम मिनिस्टर, लंका में भी चुनाव हुए, प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आ गए हैं और दो तीन दिन यहां रहेंगे, तो जो भारत के साथ उनकी बातचीत होगी, जो समझौते होंगे, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूं कि पहले लंका पर चीन का दबदबा बढ़ रहा था, जब वहां के पहले राजपक्षे जब वहां के राष्ट्रपति थे, लेकिन जब चुनाव हुए तो राजपक्षे हारे और फिर हमारे एक जो वहां राष्ट्रपति बन करके आए वो भारत के पक्ष में थे। इसके बाद उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर के आए, जिसको लेकर के अभी अभी चुनाव हुए हैं और फिर से उन्हीं के पक्ष की जीत हुई है। मतलब ये कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कि अभी जो श्रीलंका में सरकार है वो एक तरह से भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने वाली सरकार है, बल्कि वो चीन के दबाव दबदबे को कम भी करना चाहती है, क्योंकि चीन के का जिस तरह से प्रभाव खासकर श्रीलंका में बढ़ने लगा था उसको लेकर के श्रीलंका के लोगों में भी रोष था। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि श्रीलंका में अभी जो सरकार है वो भारत के पक्ष वाली सरकार है और अभी उसके प्रधानमंत्री भारत में आए हुए हैं। तो मित्रों न्यूज में बस इतनी ही बातें थी। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर, मैं क्लिपिंग्स को सीधे सीधे नहीं ले रहा हूं फ्रेंड्स, उसको लेकर के बातें नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ और भी जो खबरें थी जिनको पर क्लिपिंग्स अभी नहीं है, कल परसों उस पर क्लिपिंग्स आएंगी, उनको भी लेकर के अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो चीजें आज के अखबार में थी। दोस्तों पहली बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो है खासकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां की जो महासभा है, जो जनरल असेंबली है, तो जनरल असेंबली ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। आपको मालूम है कि महासभा का तो मतलब होगा पार्लियामेंट, जिसमें सारे देश मेंबर है, लगभग 200 देश मेंबर हैं, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं उसमें केवल 5 देश, मतलब और देश उसके सदस्य है लेकिन स्थायी सदस्य उसके 5 देश हैं। वो आपको मालूम है अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रूस है, और इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि किसी भी महासभा द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को, पारित किसी भी प्रस्ताव को यदि 5 देशों में से एक भी अस्वीकार करेगा तो वो गिर जाएगा। दोस्तों ये व्यवस्था की गई थी 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया था तब ये व्यवस्था की गई थी, तो जो देश जीते वो सिक्योरिटी काउंसिल में इनको इस तरीके से रखा गया। उस समय केवल 50-55 देश थे, आज उसकी सदस्य संख्या 200 हो गई है। और फिर ये कहां 1945, आज 2015, 70 साल भी हो गए हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है, उसमें सही पूछे तो लैटिन अमरीकी देश का तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इस बीच में दूसरे राष्ट्रों ने बहुत डेवलप किया, आप जापान को देख लीजिए आर्थिक रूप से, चीन तो चलिए ऑलरेडी है, भारत को देख लीजिए आबादी की से देख लीजिए, तो बहुत ये डिमांड होने लगी और बहुत ही जेन्यून डिमांड है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। सुधार का मतलब है कि कुछ और लोगों को, या तो सभी लोगों को समान मान लिया जाए, या कुछ और लोगों को भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाना चाहिए ताकि एक सही रिप्रेजेंटेशन विश्व का वहां भी हो सके। और इस मांग में सच पूछे तो भारत भी एक बहुत बड़ा दावेदार है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महासभा ने इसको स्वीकार कर लिया है कि इस पर बहस होगी और साल भर तक अब इस पर बहस चलेगी। दोस्तों, ये भारत की जो मांग है, जो दावेदारी है, मांग नहीं कहना चाहिए, और सच भी है, भारत जो अपने पॉइंट्स देता है बहुत वैलिड है, बहुत समय से चली आ रही है। और इसको लेकर के खासकर मेरे जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको याद होगा कि मैंने एक स्पेशल ऑडियो उनको प्रोवाइड किया है, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल्स में दी हुई है और कैसे विश्व परिदृश्य है और भारत अपने पक्ष में कौन कौन से दावे पेश कर रहा है, डिटेल में मैंने वो बातें बताई हैं। तो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहूंगा और राय भी देना चाहूंगा कि वो उस ऑडियो को, स्पेशल ऑडियो को इस समय डेफिनेटली सुन लें, इससे उस टॉपिक पर उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और चूंकि भारत की एक बहुत ही जेन्यून डिमांड रही है, बहुत लंबे समय से भारत इस बात की मांग कर रहा है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि अभी दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस पर कोई प्रश्न पूछ भी लिया जाए। और फिर मुझे लगता है कि जो आपके अप्रैल मई में जो इंटरव्यू होंगे, हो सकता है कि उसमें भी कोई प्रश्न इस पर बने, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ये खबर थी। इसके बाद एक जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, इजी डूइंग बिजनेस के ऊपर है, वो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए उसके केंद्र में क्या है, आपको मालूम है कि अभी जो जैन ग्रुप का जो एक पर्युषण पर्व आएगा, फिर अभी दशहरा, दिवाली, ये सब पर्व आने वाले हैं, उसको लेकर के कई राज्यों ने अपने यहां मांस की बिक्री पर बैन लगाया है। जम्मू कश्मीर भी जिसमें शामिल है, बॉम्बे है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, इस तरह के कुछ राज्य आप सुन रहे हैं, जिसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, इसमें कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं। दोस्तों, उसको बेस बना करके वो जो आर्टिकल लिखा गया है, वो देखिए कैसे उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एंगल लिया और बहुत ही सॉलिड एंगल लिया है। वो ये है कि जो भारत लगातार ये बात कह रहा है विदेशी मंचों पर जाकर के कि हम अपने यहां बिजनेस करने की प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, आप आइए और हमारे यहां बिजनेस कीजिए, हमारे यहां उद्योग लगाइए। उनका यह कहना है कि यदि सरकार इस तरीके के आदेश देती है तो जो इजी डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको धक्का पहुंचता है, इसलिए कि जो बहुत से ऐसे उद्योग हैं, बहुत से ऐसे फूड खासकर इंडस्ट्री के लोग हैं जो मांस का उपयोग करते हैं, मांस से जुड़े हुए हैं, तो यदि बीच बीच में इस तरह के बैन लगते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उतने दिन तक उस चीज को बचा करके रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी एक चेन चलती रहती है, उसको ब्रेक करना, उतने दिन तक उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों को प्रोडक्शन के लिए रोक देना, ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको लेकर के जो फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है वो फिर अपने को विड्रा करेंगे, वो हिचकेंगे। तो इस तरह से जो इजी डूइंग का जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सच में उसको बहुत झटका लगेगा। और भारत वैसे भी जो पूरे के पूरे देशों के जो इंडेक्स आते हैं इस मामले में काफी नीचे चल रहा है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस एंगल को लेकर के वो आर्टिकल लिखा है, तो मैं समझता हूं कि एक वैलिड पॉइंट उन्होंने अपने लेवल पर दिया है, तो स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जो आर्टिकल है आप देखेंगे वो है, नहीं वो आर्टिकल नहीं है, एडिटोरियल कमेंट है, खासकर लिंडर पेस और सानिया मिर्जा को लेकर। मालूम है कि अभी यूएस ओपन में दोनों ने डबल्स में खिताब जीता है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत का जो डायरेक्शन है स्पोर्ट्स की तरफ फेवरेबल होता जा रहा है, स्पोर्ट्स में हमें काफी अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। उसमें उन्होंने यही एंगल उठाया है कि अब रियो डी जेनेरियो में जो नेक्स्ट 2016 में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं वो अब एक साल से भी कम समय में रह गया है, और हो सकता है कि ये दोनों खिलाड़ी वहां से फिर हमारे लिए ओलंपिक का मेडल लेकर आए टेनिस में, ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। उसको लेकर के एक आर्टिकल है, और चूंकि स्पोर्ट्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल सर्विस में, तो उस लिहाज से मैंने वो आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया है। मित्रों, इसी तरह से इकोनॉमिक टाइम्स में एक एडिटोरियल कमेंट है, उसको भी देखिएगा, खासकर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि 30% इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म हो जाती है, कुछ चोरी हो जाती है, कुछ नष्ट हो जाती है, कुछ फ्री बांट दी जाती है, और 30% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। मतलब उसमें दिया हुआ है कि लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं वो 286,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लॉस के कारण उनको हो रहा है, जो इसके संवहन पर नुकसान हो जाता है। अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए तो आप मान करके चलिए कि 30% तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसको लेकर के एक आर्टिकल है, और चूंकि देश एनर्जी प्रॉब्लम से बहुत जबरदस्त रूप से जूझ रहा है तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से भी आपके लिए वो एडिटोरियल कमेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग उसे भी जरूर देखें। तो मित्रों, इसी के साथ ही और अखबारों के क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पर आप लोग नजर डाल दें, उनकी मैं डिटेल्स में चर्चा करना जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। तो न्यूज़पेपर वाले पार्ट को भी मैं अब यहीं समाप्त करता हूं मित्रों, और आता हूं इसके बिल्कुल अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। दोस्तों, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा प्रदीप कुमार का, जो कैथल हरियाणा से हैं, जो अभी अक्टूबर के बैच में आ रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, और जो भी स्टूडेंट उनके एरिया से आ रहे हों यदि वो चाहते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है प्रदीप कुमार और इनका मोबाइल नंबर है 9354198084। दोस्तों, विकास चौहान का दिल्ली से मेल है। विकास, बहुत बहुत बधाई कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आपका लेख छपा है, और मैं अपने स्टूडेंट्स से सही मायने में ये अपेक्षा करूंगा कि जरा से भी अगर वो किसी विषय पर अच्छे से सोच पाते हैं, उसको अपने दिमाग में मत कर उस पर लिख पाते हैं, तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि वो अपने ये आर्टिकल्स अलग अलग अखबारों में भेजने की कोशिश करें। छपे न छपे, इसी बहाने आपकी कम से कम तैयारी होगी, और छप जाएगी तो वो आपके लिए वो बोनस होगा। तो बहुत इसके लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। और दोस्तों, बहुत से मेल आए हैं, अब मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और इनमें से कुछ के नाम हैं मनोज जाधव इंदौर / मऊ से, आनंद कश्यप वाराणसी से, सुरेंद्र प्रताप इलाहाबाद से, निपुण शारदा। दोस्तों, निपुण शारदा वही हैं जिनके बारे में मैंने एक बार 2-3 दिन पहले चर्चा की थी कि इस आरडीओ का जो लाइफ मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है उसको सुनने के बाद किस तरह से उनके पिता जो काफी बीमार थे उनमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया, और उस समय उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। निपुण शारदा हैं। इसके बाद है ओम प्रकाश कुमावत जयपुर से, सागर भंडारकर नागपुर से, निखिल सिरगावे कोल्हापुर से, विघ्नेश कोपरकर मुंबई से, और विपुल वार्षणे बरेली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही अब इजाजत चाहूंगा इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।